ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे अति प्यारे ऊंचे से ऊंचा और प्यारे से प्यारे शिव बाबा के सभी प्यारे भाई बहने और बाबा के बच्चे अपने प्यारे मधुबन में इस बार सारा ईस्टर्न जोन व सारे तरफ के भाई बहने बाबा के साथ शिव जयंती मनाने के लिए पधारे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम अपने प्यारे बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाएंगे। और प्रतिवर्ष शिव जयंती के अवसर पर अपने प्यारे मधुबन से कुछ प्रतिज्ञा के रूप से झंडे के नीचे संकल्प करने के लिए संकल्प हम सब के लिए जाती है और सब में कुछ ना कुछ संकल्प करके उसका पालन करते हैं। इस बारी भी जो प्रतिज्ञा पत्र गया उसमें लास्ट संकल्प क्या था कि स्वयं बदलेंगे तभी हम दुनिया को बदल सकती हैं। और कहने में भी यही आता है कि हम बदलें तो जग बदले, ये नहीं कहा जाता है कि जग बदले तो हम बदले। जब हम पहले पहले बाबा के ज्ञान में आए तो सबसे पहले हमें यही शिक्षा दी गई कि स्वयं का परिवर्तन करो और उसके रूप में हमारे सामने सबसे पहले नंबर वन ब्रह्मा बाबा एक सैंपल के रूप से आए और जिनको देखकर हम सब ब्राह्मण तैयार हुए अपने जीवन को बदलने के लिए। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो अपना तन मन धन वाणी समय संकल्प सब कुछ जाति धर्म कर्म सब कुछ बदल दिया और हम बच्चों का नाम भी बदल दिया कि तुम सब बच्चे भी ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। तो हमें ब्राह्मण नाम पड़ा जो देवताओं के साथ जोड़ा जाता है। जब ब्रह्मा देवता नमः कहती है तो ब्राह्मण देवता नमः भी कहती है कि उन ब्राह्मणों को नमस्कार करती है। जब यज्ञ और हवन होता है बाहर में तो कौन से ब्राह्मण को नमस्कार किया जाता है? जो ब्राह्मण देवता बनने वाले होती है। और देवता ब्राह्मण कौन से बनते हैं? जो ब्राह्मण अपने जीवन को हर प्रकार से बदल लेते हैं, नया जीवन बना लेते हैं। पहले हम क्या थे? द्वापर से आप जरा विचार करिए, हमारे अंदर कितने अवगुण थे, कितना परिचिंतन था, कितना पर दर्शन था और कितना पर मत पर चलते थे। उसी पर चिंतन से और पर दर्शन से क्या हुआ? पूरी रामायण बनी। पर चिंतन जब केकई ने किया मंत्रा की बातों में आके तो रामायण बन गई। और रामायण बनने से क्या हुआ? दशरथ के प्राण चले गए और रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास चले गए। तो हम सब समझ सकते हैं कि परचिंतन करना कितना खराब है। तो बाबा ने हमें सबसे पहले बतलाया कि दूसरों का चिंतन करना खत्म करो। और बाबा स्वयं भी सदा अपने को आत्मा आत्मा कहते और आत्म चिंतन करते करते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए। और बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि तुम सदा आत्म भाव में रहो, जिसको देखो आत्मिक स्थिति में देखो, और हम दूसरे को देख करके क्या कहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसा है, तो एक अंगुली दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन अंगुली हमारी तरफ आती है कि ये एक गुना खराब है तो हम तीन गुना खराब है। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं हमेशा कि तुम अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरों के अवगुण देखना अच्छा नहीं है। कबीर दास ने क्या कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे पहले हमें अपनी कमी को देखना चाहिए। इसके ऊपर एक बात है, एक व्यक्ति ने एक बार कोयल के पास गया और कोयल को कहा कि कोयल तुम बहुत सुंदर गाती हो, बहुत मधुर वाणी है और कितनी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा अगर काली ना होती तो और कितना अच्छा होता। वो मुस्कुरा दी। दूसरी बार वो समुद्र के पास गया, उसको कहा कि आप कितने अच्छे हो, कितने गहरे हो, कितनी आपके पास समाने की शक्ति है, लेकिन अगर आपका पानी थोड़ा खारा ना होता तो आप कितने और अच्छे होते। तीसरी बार वो कमल के पास गया, गुलाब के पास, कि आप कितनी सुंदर खुशबू देते हैं, सब आपकी खुशबू पाकर के एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके चारों तरफ कांटे ना होते तो आप और ही कितने सुंदर होते। तो तीनों ने उस व्यक्ति को एक जवाब दिया कि हे मानव, तुम बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो, लेकिन अगर आपको किसी के अवगुण देखने की आदत ना होती तो तुम कितने अच्छे होते। तो ये बात हमें ये सिद्ध करती है कि हम दूसरे का अवगुण देखते हैं और अपना गुण देखते हैं। करीब 2500 वर्ष से हमारी ये आदत पड़ी हुई थी, क्या कि हमारे अंदर अगर 90% अवगुण है और 10% गुण है तो उसका गायन करते रहते हैं, और दूसरे के अंदर 90% गुण है और 10% 1% अवगुण है तो उसका गायन करते हैं। होना क्या चाहिए कि हमें दूसरे के सदा गुणों को देखकर अपने अंदर भर लेना। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुण की चोरी जरूर करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास जो चैतन्य शक्ति है उसके पास कुछ ना कुछ गुण जरूर है। जब जड़ चीज के पास गुण है, आज भी हमें बाबा ने क्या बताया कि खुशबूदार फूल बनो। अगर फूल बहुत सुंदर रूप रंग में लेकिन उसमें खुशबू नहीं है तो वो जैसे कि एक डेकोरेशन का फूल है। अगर हमारा जीवन बहुत सुंदर है रंग रूप में लेकिन गुणों की खुशबू नहीं है तो हमारा जीवन भी क्या है, एक डेकोरेशन के माफिक। डेकोरेशन को क्या कहेंगे, प्रजा में आने वाले के माफिक हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए हमेशा बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना जितना बदलते जाएंगे अपने अंतर मन से तो दूसरे के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा। आज मम्मा बाबा का हमारे ऊपर, दादी दीदियों का कितना प्रभाव पड़ता है, उनकी जीवन कितनी प्रैक्टिकल है। जब उन्होंने सब कुछ अपने जीवन के अंदर त्याग तपस्या सेवा प्रैक्टिकल में लाया तब तो दूसरों को बदलाया, और आज लाखों ब्राह्मण सामने खड़े हो गए, बदल लिए अपने जीवन को। कैसे बदला, जब हमने अपनी बुराइयों का त्याग किया। अगर हमारे अंदर त्याग नहीं है और हम दूसरे को कहें कि आप ये चीज छोड़ो, जैसे इसके ऊपर भी एक कहावत है कि एक बार एक माता अपने बच्चे को लेकर आई गांधी जी के सामने और कहा कि बापूजी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, शायद आप शिक्षा दे देंगे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो उन्होंने कहा कि माँ, हे माता, तुम अपने बच्चे को 8 दिन के बाद लाना। तो वो चली गई और 8 दिन के बाद जब बापू जी के पास आई और बापू को बोला कि आज इसको आप शिक्षा दीजिए, तो उसने कहा कि बच्चे, गुड़ खाना अच्छा नहीं है। तो उसने तुरंत हाँ किया और गुड़ खाना बंद किया। तो उस माता ने बापू जी से कहा, गांधी जी से, कि ये बात आपने 8 दिन के पहले क्यों नहीं बताई। तो उन्होंने खुद कहा कि 8 दिन के पहले मैं खुद गुड़ खाता था और मैं उस समय इसको कहता तो ये गुड़ नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने पहले खुद छोड़ा, तब इसने खुद मेरे छोड़ने के प्रभाव से मैंने समझाया तो इसने छोड़ दिया। तो हर एक व्यक्ति को पहले हमें अपने अंदर हर चीज का बदलाव लाना चाहिए, अपने मन को, वाणी को, कर्म को, वृत्ति को, संकल्प को, दृष्टि को। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है, बाबा भी कहते हैं मुरलियों में, कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, तभी आप विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और स्वराज्य अधिकारी नहीं बने यहाँ पर संगम पर, तो सत्यु में विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सत्यु की राजधानी का आधार अभी संगम युग है। हमारे लिए इतना मोस्ट वैल्यूबल अभी समय है, जबकि हम अपने जीवन का हर प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए वाणी के प्रभाव कितना खराब रहता है। वाणी के कारण, जैसे परचिंतन के कारण पूरी रामायण बन गई और उसको लोग पढ़ते रहे, पर एक भी बात रामायण की जीवन में उतरी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि पर चिंतन मत करो, पर दर्शन मत करो, दूसरे को मन देखो और पर मत पर चलो नहीं, लेकिन पर उपकार की भावना से हरेक के प्रति उपकार रखो, शुभ भावना रखो। अगर हम कुछ भी दान नहीं दे सकते हैं, रुपया नहीं दे सकते हैं, कपड़ा नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, तो शुभ भावना का दान तो दे सकते हैं। अपनी वाणी से मधुर बोलकर बाबा का ज्ञान अमृत तो दूसरों को पिला सकते हैं। अगर हमने वाणी में भी धोखा दिया तो उसके आधार से क्या बन गया, द्वापर से लेकर अभी तक क्या पढ़ते आए, महाभारत। महाभारत किसके आधार से बना, वो भी वाणी के आधार से बना। जब द्रौपदी ने दूसरे का अवगुण देखा और उसने दुर्योधन को जाके एक शब्द बोल दिया, तो दुर्योधन ने क्या किया, बदले की भावना आ गई और उसका बदले के कारण पूरा महाभारत तैयार हो गया। फिर उसने जब द्रौपदी का चीरहरण किया तो अभी द्रौपदी ने क्या किया, चारों तरफ देखा, मुझे पांडव मदद करे, मुझे भीष्म मदद करे, मुझे ये मदद करे। सबसे लास्ट में उसने गॉड को पुकारा, श्री कृष्ण को याद किया। लेकिन श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने उलहना दिया कि मैं कितनी देर से आपको पुकार रही हूँ और कितनी देर से बुलाया, तब आप देरी से क्यों आई, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम सारे सहारे ढूंढ रहे हो, सब सहारे ढूंढ रही हो, लेकिन मेरी तरफ तुम्हारी नजर लास्ट में गई। जो मुझे लास्ट में याद किया तो मैं लास्ट में आया, फर्स्ट में तुम इसको देख रही, इसको देख रही, इसको देख रही हो। तो हम भी क्या करते हैं, जब कोई तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, कोई विघ्न आता है, बाधा आती है, तो हम दुनिया के भौतिक सहारे ढूंढते हैं और ये मदद करे, ये मदद करे, ये मदद करे। लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम सारे संसार के किनारे और सहारे छोड़ दो और हर पल मुझे याद करो, तो हर पल मैं आपके साथ हूँ। और जो भी संकल्प लोगे दृढ़ता से अपने जीवन को बदलने के लिए, वो संकल्प में मेरी मदद का आप अनुभव करोगे और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। तो हमारे परचिंतन परदर्शन से कितना नुकसान होता है, अगर हम ये बात समझ गए तो हम अपने जीवन को बदल लिया और आज हम ब्राह्मण बन गए, हमारा जाति धर्म कर्म सब बदल गया। हमने समझ लिया हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म कोई चंदन लगाना तिलक लगाना नहीं है, लेकिन ज्ञान और योग की जीवन में प्रैक्टिकल धारणा करना है, उस ज्ञान को समाना ही और अपने आप को बनाना ज्ञान स्वरूप, वही है हमारा असली धर्म। अपने बाप को हर टाइम याद करना, अपने घर को याद करना, जिन बातों को हमने भूला उन बातों को बाबा ने हमें ब्रह्मा के द्वारा सैंपल के रूप में सामने लाकर सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया कि तुम सब बदल जा, और जितना जल्दी बदलेंगे उतना जल्दी इसी दुनिया के अंदर अपना स्वराज अथवा सतयुगी संसार आ जाएगा। इसलिए हर टाइम लोग जो भागवत गीता गाते हैं या प्रवचन आदि करते हैं वो खाली कहते हैं कि कथनी और करनी एक करो। अपने भागवत वगैरह जो साधु महात्मा प्रवचन कहते हैं तो प्रवचन में ये बात कहते हैं कि कथनी और करनी एक करो, लेकिन बाबा हमारे सच्चाई के रूप से हर एक ब्राह्मण को ये बात सिखलाती है कि मेरे हर एक बच्चे का कथनी और करनी एक हो जाए, और कथनी और करनी अगर अलग होगी तो दुनिया वालों में हमारे में अंतर क्या होगा। हम जो कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए, और जो सोच रहे हैं वही हमें कहना चाहिए, और जो कह रहे हैं वही हमें करना है, तभी हम सच्चे मायने में ब्राह्मण बनेंगे। हम दूसरों को कहते हैं सच बोलना चाहिए, हृदय को साफ रखना चाहिए, बुद्धि को एकदम क्लीन रखना चाहिए, लेकिन हमारा बुद्धि मन और हमारा बोल चाल कितना सच है वो हम नहीं देख पाते हैं। और अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखने के कारण कितने ब्राह्मण हैं, कहीं क्रोध में फेल हो जाते हैं, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कोई ना कोई बात में अटक कर और विघ्नों में फंस जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो गायन है कि दुर्वासा को ऋषि कहा जाता था, लेकिन दुर्वासा कितना क्रोधी था, कहां थे दुर्वासा ऋषि, इसी ब्राह्मणों की दुनिया में है। जब तक हमने काम क्रोध लोभ अहंकार जो पांच विकार हैं, उनको पूर्ण रीति से नहीं छोड़ा है, पूरा मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति और कृति से त्याग नहीं किया है, तब तक हम ऋषि होते हुए भी क्या कहलाएंगे, दुर्वासा। वास्तव में कोई दुर्वासा ऋषि ऊपर से थोड़ी आए थे, अलग थोड़ी थे। इसलिए बाबा कहते मेरे ब्राह्मणों को अभी अंतिम चरण में क्या करना चाहिए, एकदम संपन्न और संपूर्ण बन जाना चाहिए। लास्ट में बाबा हर टाइम यही कहते हैं, और एक पाठ पढ़ाते हैं बाबा हमेशा, 18 अध्याय गीता में क्या पढ़ाया, नष्टो मुआ स्मृति लब्धा। और बाबा हमें आज 80 वर्षों से यही बात सिखा रहे हैं, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को सर्व बातों को भूल जाओ, एक मुझे याद करो। लेकिन अर्जुन भी कृष्ण से 18 अध्याय पढ़ते 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 अंतिम चरण में उसने नष्टो मुआ हुआ और फिर स्मृति लब्धा बना। जब तक हम नष्टो मुआ नहीं बनेंगे तो स्मृति लब्धा निरंतर बाबा की याद में कैसे रहेंगे। तो अभी हमारे 80 वर्ष हो गए, अंतिम चरण चल रहा है, जब भी हमें हमेशा बाबा यही कहते हैं कि बच्चे पल पल मुझे याद करो, तुम्हारा एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम अपने आप को देखने में और अपने आप को बदलने में थोड़े अलबेले हो जाते हैं और थोड़े देर लगा देते हैं, इसके कारण से हमें थोड़ा मुश्किल आता है। लेकिन हम तुरंत जैसे बाबा हमें सिखाते हैं हम अपने आप को बदल लें, तो हम दूसरे को भी बहुत जल्दी बदला सकते हैं। बाबा हमें कहते हैं आप गुणों के अंदर 3 टैबलेट रोज खाओ। आपको मैं विशेष 3 गुण बता रही हूँ, तुम 3 टैबलेट रोज खाओ। एक, पेशेंस, हर चीज में धीरज। अगर हम देखिए जल्दी 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 कोई काम करते हैं तो कहीं गिर जाएंगे। कोई दौड़ता है जल्दी जल्दी तो क्या होता है, उसका किसी भी प्रकार से नुकसान हो सकता है। लेकिन धीरज रख के जब सब काम करते हैं धीरजताई से, तो वो गुण हमें धरती माता को धीरज के कारण उसको मां कहा गया है। वो हमें बहुत दूसरा गुण क्या प्रदान करता है, शांति। धीरज के बाद क्या आ जाता है, शांति। तो पेशेंस, पीस और लव, ये 3 टैबलेट आप रोज अपने जीवन में सुबह से शाम तक खाते रहिए। और जितना इसको खाएंगे उतना हमारी मनी, एनर्जी और टाइम का बचत होगा, सफल होगा और हम अपने जीवन को बदला सकेंगे। इसलिए ये 3 बहुत ही महान गुण है। इसके साथ साथ अनेक गुण हमारे पास आ जाते हैं। और 3 शक्तियों को आप अपने जीवन में विशेष धारण करिए तो हम हर विघ्न को पास करते हैं, कर सकते हैं और हर माया के रूप को पहचान सकते हैं। एक है परखने की शक्ति। क्यों, माया हमको 20 आंखों से देखती है और हम माया को 1 आंख से देखते हैं, 3रे नेत्र से। और वो हमें 20 तरफ से देखती है, 20 तरफ से चोट लगाने की कोशिश करती है। पर हमारी 1 आंख इतनी तेज है, 3रा नेत्र जो स्वयं सर्वशक्तिवान ने हमें दिया है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुए, तो उस 3रे नेत्र से हम माया की 20 आंखों को फोड़ सकती है। वो जिधर से भी आएगी, जिधर से भी देखेगी, हम उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं और उससे सदा अपने आप को बचा सकते हैं। हमें हमेशा अपने आप को बचाने के लिए, अपने 3रे नेत्र को अच्छा करने के लिए परखने की शक्ति अवश्य धारण करनी चाहिए। और दूसरी शक्ति है सहन शक्ति। जब हम संसार में आए हैं तो आप देखिए जब कोई मूर्ति तैयार होती है उसको भी पीटा जाता है, सहन करना पड़ता है। कितना उसको लोहे से पीट पीट के ठीक करते हैं तब जाकर वो मूर्ति बनती है और मंदिर में पूजनीय बनती है। तो हम जब पूजनीय बन रहे हैं अभी और जाके द्वापर से हमारी पूजा शुरू होगी और हम अभी देवता बनने का कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी सहन करना पड़ेगा। सहन शक्ति माना ही ब्रह्मा कुमारी, सहन शक्ति माना ही ब्रह्मा कुमार। अगर सहन शक्ति नहीं है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने में हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो शक्ति है वो हमें शीतलता भी प्रदान करती है और शक्ति भी देती है और उससे हम बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। हमें कभी भी, चाहे कई लोग कहते हैं क्या करें, हमें दूसरे का तो सहन हो जाता है पर अपने का सहन नहीं होता है। अपने जब अपने को कहते हैं तो सहन नहीं होता है। इसके ऊपर एक कहावत है कि एक लोहे की दुकान थी और एक सोने की दुकान थी, तो सोना भी पीटा जाता था और लोहा भी पीटा जाता था। तो लोहे ने सोने के मन में आया कि एक टुकड़ा अगर मुझे लोहे का मिल जाए तो मैं उससे कुछ बात करूं। तो एक दिन उछल के पास सोने से एक टुकड़ा उसके पास गया सोने का। तो सोने ने पूछा लोहे को कि मेरी पिटाई भी होती है, तुम्हारी पिटाई भी होती है, पर तुम इतना चिल्लाते क्यों? मैं तो इतना चिल्लाता नहीं, मैं तो सहन करती हूँ। मुझे अग्नि में भी डाला जाता है, तुम्हें भी डाला जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे तुम्हें दूसरे पीटते हैं, सोने को लोहा पीटता है लेकिन लोहे को लोहा पीटता है, इसलिए वो मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमसे अपनों का सहन नहीं होता है, दूसरे का तो सहन हो जाता है। अरे अपने का तो सब सहन कर लेते हैं और बड़ों का भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने हमें वो शक्ति दी है, तुम बड़ों का भी सहन करो, छोटा भी सहन, छोटों का भी सहन करो, अपनों का भी सहन करो और पराये का भी सहन करो, तभी तुम मूर्ति बनने लायक, एक पूजनीय देवता बनने लायक बनोगे। सवेरे बाबा ने क्या कहा, देवता बनने के लिए, राजा बनने के लिए हमें दाता के संस्कार होने चाहिए। जो चीज आए हमारा हाथ यूं होना चाहिए, चाहे हम वाणी से दान करें, चाहे भावनाओं से दान करें, दृष्टि से देखकर किसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, दृष्टि से निहाल कर सकते हैं। गुरु नानक की वाणी में भी है कि दृष्टि से निहाल किंदा ततुरु नानक ने, बाबा भी हमें कहते हैं दृष्टि योग भी सिखलाया जाता है। तो हम दृष्टि वृत्ति कृति सबसे वाइब्रेशन वातावरण वायुमंडल ठीक कर सकते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। और जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे उतना उतना हम बदलते जाएंगे, और हमें देख करके हमारे सामने वाले हजारों भाई बहनों को हम बदला सकते हैं। मैं जो भी आपको बात बता रही हूँ सब अपने लाइफ के 53 वर्ष के अनुभव के आधार से बता रही हूँ। साकार बाबा से जब से मैं मिली हूँ तब से हर चीज का अनुभव कर करके अपने जीवन को उसमें ढाला है। इसलिए वही बात मैं आपको सुनाती हूँ कि जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और करना चाहिए। और तीसरी शक्ति हमें कौन सी लानी चाहिए अपने अंदर, समाने की शक्ति। अगर हमारे पास कोई भी भाई बहन है अगर कुछ गलती भी कर देते हैं तो आखिर हमारे ही तो भाई बहन है, हम सब एक पिता की संतान है। कैसे है, क्या एक परिवार के अंदर कोई बहन या भाई कुछ गलती करता है तो उसको निकाल देते हैं, उसकी बात को छुपाई जाती है, समाई जाती है। तो समुद्र के अंदर कितनी क्वालिटी है, वो कितना गहरा है, हर एक कूड़ा करकट सब ले जाता है और अपने अंदर समा लेता है, और जो चीज काम की नहीं है उसको बाहर फेंक देता है, अपने अंदर नहीं रखता है। तो हमारे पास भी ये जैसे तीन गुण वैसे तीन हमारी समाने की शक्ति बहुत आगे बढ़ने में और अपने जीवन को बदलने में काम आएगी। और एक बात आपको बताती हूँ कि जब महाभारत की लड़ाई हुई और लास्ट स्टेज हुआ तो भीम और अर्जुन जब विजय प्राप्त कर लिए तो दोनों को अभिमान हो गया कि मैंने जीता, मेरे कारण विजय हुई। भीम भी बोला मेरे कारण विजय हुई। तो दोनों जब श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि नहीं, वही उसी ने जीता है, बेलासन ने, भीम के बेटे ने जीता है, जबकि उसका सिर सिर्फ था, वो देखता था। और सारे 18 अध्याय माने सारा युद्ध 18 अध्याय तक जिसने देखा उसने विजय प्राप्त करी। अब आप सोच सकते हैं बिना धड़ के कोई 30-18 युद्ध कैसे देख सकता है सारा महाभारत। उसका अर्थ भी ये है कि बाबा हमें क्या कहते हैं कि जब जितना आप आत्महिमानी बनेंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, तो हम अपनी कमियों को देख सकते हैं, जो हमारे अंदर सूक्ष्म कमियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोटे रूप से तो हमने सब जीत लिया, हम कहते हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जीतने के लिए और अपने आप को टटोलने के लिए और देखने के लिए हमें धड़ और सिर अलग करके अपनी आत्मिक स्थिति में ही रह करके जब देखेंगे तो औरों को भी पहचान सकेंगे और अपने आप को भी पहचान सकेंगे। बाबा ने हमें सब शक्ति दी है। सबसे पहले हमें अपने को पहचानने की शक्ति दी, अपने अपने आप की पहचान दी, अपने घर का एड्रेस बताया, सब कुछ बताया कि तुम क्या थे, तुम्हारे पास क्या था, क्या नहीं था, सब कुछ था। लेकिन आज आपके पास क्या रह गया है? आचार विचार व्यवहार सब में कमी आ गई है। इसलिए बाबा ने हमें बदलने के लिए सब कुछ बताया, आहार विहार व्यवहार आचार आचरण सब बदलो। सिर्फ आचार्य नहीं बनो लेकिन अपने आचरण को भी प्रैक्टिकल में लाओ। कहीं पर हमें बड़ा अभिमान आ जाता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन नहीं, हम तो बाबा के छोटे से बच्चे हैं। हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर नम्रता निर्मलता जिसको कहते हैं स्वच्छता, दादी वगैरह हमेशा बताती हैं, अपने मन को सच्चा सफाई से बना के रखो। जितना हम सच्चे रहेंगे साफ रहेंगे और वृत्ति श्रेष्ठ रहेगी उतना दूसरों को वाइब्रेशन पहुंचा सकेंगे। इसके ऊपर आपको एक बात और मैं बता देती हूँ कि एक राजा था और उसके पास एक राजकुमार था, उसकी उसने शादी की तो उसकी जो बहू आई वो इतनी धार्मिक थी, इतनी श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ कर्म वाली, आचरण करने वाली, जिसका कोई बात नहीं पूछो, देवी थी वो, देवी के समान। तो सब उसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसके सामने कोई भिक्षा लेने साधु आया गेट पर, तो उसने उसको कह दिया कि हम तो बासा खा रहे हैं और आपको क्या दें, आप आगे चले जाओ। ये बात राजा ने सुन ली, उसको बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरे राज्य के अंदर सब कुछ है, घी दूध मलाई मक्खन रबड़ी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, ये आज ऐसे कह रही है कि हम बासा खा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, हमारे घर में इसका धर्म कर्म चरित्र सब कहाँ गया। तो उसने कहा नहीं, हम ऐसी बहू को नहीं रखेंगे और उसने ये कोशिश की, इनको हम देश निकाला दे देंगे। तो उनके मंत्री ने सलाह दी कि आप कोई काम में जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धीरज रखो, शांति रखो, पंचायत बुलाओ, इनका परिवार बहुत धार्मिक है, बहुत दानी है, महादानी है, ये लड़की ऐसी नहीं हो सकती है, और बुलाने के बाद फैसला करो इस बात का। तो राजा बात मान ली और इसी प्रकार सबको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुमने बच्ची इतनी अच्छे परिवार की, इतने बड़ी घर की होकर ये बात कैसे कही एक राजा की बहू बनकर। तो उसने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं सारा दिन अपनी वृत्ति के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा ये वाइब्रेशन देती हूँ सबको कि मेरे परिवार के अंदर सब कुछ है, पर धर्म कर्म चरित्र श्रेष्ठता पूजा पाठ दान पुण्य का नाम नहीं है। तो मैंने जो पहले किया यहाँ पर, यहाँ सब ने जो पहले किया वो अभी खा रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं तो कल क्या खाएंगे, बासा तो अभी खा रहे हैं और कल के लिए क्या बचेगा। तो मैंने क्या गलत कहा, उसको हम क्या देंगे। ये बात सुन के सब दांत में उंगली देने लगे कि ये तो बहुत चतुर है, इसने बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात कही। यहाँ तक कि राजा भी नतमस्तक हो गया कि ये एक श्रेष्ठ आचरण वाली जो हमारे घर के अंदर अपनी वृत्ति कर्म चरित्र और धार्मिक विचारों से ये वातावरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसने ये बात कही। मैं आज से ही सारे राजपाट का आधा भाग तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, तुम खूब दान करो, महादानी बनो, धर्म करो, चरित्रवान बनो और इस सारे परिवार को बदल दो। उसने रियली में ऐसा किया कि सारे परिवार को अपनी वृत्ति से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से बदल डाला और उसने जगह जगह अपने धार्मिक विचारों के आधार पर मंदिर बनाए, पूजा पाठ किए, दान पुण्य किए, जिसके आधार से हजारों लोगों के अंदर बदलाव आ गया। तो हम भी भले गृहस्थ में रहें, चाहे आश्रम में रहें, अगर अपना वातावरण वृत्ति के द्वारा हर प्रकार से ठीक रखें, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, आहार के द्वारा, विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हम किसी को ज्ञान सुनाने गए लेकिन हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमने तेज बोल दिया, या समझिए हमने उसको मधुर नहीं बोला, या दोपहर का टाइम है, हमारा रेस्ट का टाइम है, हमने उसको वापस कर दिया, भाई अभी मत आप दरवाजा खोलो, किसी को नहीं बुलाओ क्योंकि मेरा रेस्ट का टाइम है। वो बेचारा 10 किलोमीटर से चल के आया और मेरा रेस्ट का टाइम है, मैंने उसको बिठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया, पूछा भी नहीं, बाबा का ज्ञान अमृत भी नहीं पिलाया और अपने रेस्ट के लिए कुछ त्याग भी नहीं किया और उसको वापस कर दिया, ये मेरा कौन सा धर्म है? ये तो बाबा नहीं कहते है। इसलिए बाबा ने तो दिन रात अपने जीवन को सेवा में लगाया, और दादी दीदी जितनी महान बनाया किसने बनाया? बाबा ने। हम लोगों को दादी दीदियों ने इतना महान बनाया किसने बनाया? दादियों ने। तो जब तक हम नहीं करेंगे तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए हम अपने कर्मों से, अपने वातावरण से, अपने वाइब्रेशन से हम हर एक को बदल सकते हैं। व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज है ज्ञान के अंदर। अगर हमारा व्यवहार बदल गया, हमारी वाणी बदल गई, वृत्ति बदल गई, भावना, तो हम कितना भी कोई टेढ़ा मेढ़ा उल्टा है उसको उलट से पुलट कर सकते हैं। आज बाबा ने लाखों ब्राह्मण तैयार करवा दिए, किसके आधार से? सिर्फ दृष्टि, वृत्ति, कृति, व्यवहार और आचरण के आधार से हजारों लाखों ब्राह्मणों को तैयार कर लिया, और नई सतयुगी सृष्टि का नींव डालकर वो आने वाली हो गई। किस आधार से? अपने बदलने से। हम बदलेंगे तभी धरती पर स्वर्ग आएगा, तभी ये दुनिया सतयुगी और चेतन बनेगी, तभी हम विश्व के स्वराज अधिकारी बनने से विश्व के राज अधिकारी बन सकेंगे। विशेष 5 बातों पर आप दिन भर में अटेंशन रखो। जब 5 बातों पर हम दिन भर में अटेंशन रखेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत शीघ्रता से बदल सकेंगे। और ये टाइम बिल्कुल कम रह गया, अभी इस थोड़े से टाइम के अंदर ही हमें तीव्र गति से, जब आप देखिए हमें कहीं दूर जाना होता है, समय कम है, और दर्शन करने जाना है किसी देवी के या देवता के, और हमारे पास समय कम है, तो हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं ना, नहीं तो पट बंद हो जाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास समय कम है और तीव्र गति से हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। ये तो आप सब जानते हैं कि सती हुई दुनिया में संपूर्णता को जो प्राप्त करेंगे वही जाकर के राजभाग प्राप्त करेंगे, और जिसमें कुछ भी कमी रह जाएगी तो वो त्रेता युग में आ जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। पर हमें तो बनना है कृष्णवंशी, बाबा के साथ साथ जाना है। तो अभी वर्तमान समय, एक एक पल, एक एक क्षण हमें अपने ऊपर अटेंशन देने का टाइम है। उसमें मैं मोटी मोटी, आपको टाइम हो गया है, 4-5 बातें बताती हूँ। एक बात, हमें सबसे पहले अपने ऊपर व्यर्थ पर ध्यान देना है कि मेरे पास, पहली बात है कि व्यर्थ ना चिंतन में आए, ना दृष्टि में आए, कोई भी कहाँ भी कैसा भी पोस्टर है, कुछ भी है, लेकिन मैं व्यर्थ नहीं देखूं, नहीं सोचूं, नहीं बोलूं, और नहीं वृत्ति में लाऊं, और नहीं करूं। व्यर्थ को पूरा अवॉइड करेंगे तब हम बाबा का अवार्ड पास विथ ऑनर का सतयुग के लिए पा सकेंगे। तो पहली पॉइंट है व्यर्थ को खत्म करना, अवॉइड करना, ABC। व्यर्थ को अपने जीवन से सुबह से शाम तक देखो, मैंने कोई व्यर्थ में अपना मन तो नहीं लगाया, अच्छे काम में लगाया, हर चीज से दान पुण्य सेवा में अपने जीवन को बिताया, या रेस्ट में बिता दिया या व्यर्थ में गमा दिया, अपने आप को अपने को चेक करना है। दूसरी बात, बाबा हमेशा हमें कहते हैं बच्चे अमृत वेले पर ध्यान दो। जितना जल्दी से जल्दी हम जाग सकते हैं उतना जल्दी जागें, चाहे 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, ये नहीं हम जबरदस्ती सोने की चेष्टा करें, नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, निद्रा जीत आपको बाबा बना रहा है, आप जाकर के बैठ जाइए मुआ धोके और बाबा से बातें करिए, रू रूहान करिए, फरिश्ता बन जाइए और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर बातें कीजिए, आपको अमृत वेले बाबा खूब वरदान और शक्ति और गुण अपने भंडारे से निकाल के आपको दे देगा और देता है, ये अनुभव में है। लेकिन अमृत वेले नहीं उठेंगे तो हमारा दिनचर्या सारे दिन की खराब हो जाएगी, इसलिए अमृत वेले पावरफुल योग करना, मनन चिंतन करना, जाकर अच्छी तरह फ्रेश होकर के बैठना और बाबा से बातें करना, ये हमें करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमें हमेशा अपनी दिनचर्या पर अटेंशन रखना है, सुबह से रात तक हमारी बाबा ने दिनचर्या बनाई है 4 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक, के उसी के अनुसार मेरा ट्रैफिक कंट्रोल, मेरी दिनचर्या सब चल रही है, कोई भी कर्म मेरे से मन से वचन से कोई भी प्रकार से गलती नहीं हो जाए। आज तक तो मैंने द्वापर से बहुत गलत कर दिया है, लेकिन अब क्यों मैं गलत करूं, अब तो हमारा लास्ट टाइम है, और रात को बाबा को गुड नाइट करके सोऊं, जो कुछ मेरे चार्ट में आया मैं सच्चाई से सुनाकर और बाबा को साथ लेकर निद्रा को पाऊं, ये तीसरी बात। चौथी बात, हमें जो बाबा ने जिंदगी के लिए हमारे लिए मर्यादा नियम संयम बताए हैं, खाने में, रहने में, चलने में, भाई बहन के साथ बातचीत करने में, कितनी मर्यादाएं बतलाई हैं बाबा ने, कितनी बातें बताई हैं, उन मर्यादाओं का हम पालन कर रहे हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें इतनी जरूरी हैं हर दिन में, ये नहीं कल तो मैंने चेक कर लिया आज नहीं किया, आज चेक कर लिया कल करूं कल नहीं करूं, कल पर हमारा आज निर्धारित है, आज के ऊपर कल निर्धारित है, आज से हमारा कल बनेगा, कल से आज बना, आज और कल की ये जिंदगी है। जैसे श्याम सुंदर एक अक्षर से सारा जीवन पलट जाता है, ऐसे ही ये जीवन भी हमारा आज कल में है, तो कल कल करते एक एक दिन हम अपना कुछ गलती कर दें, नुकसान कर दें, फिर सोचे आज नहीं कल ठीक करेंगे, कल नहीं परसों ठीक करेंगे, नहीं, आज से ही हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करके। पांचवी बात है, कोई भी कार्य हम करेंगे, हम अगर दृढ़ संकल्प और दृढ़ मन में प्रतिज्ञा करके कर लें कि मैं संपूर्ण बन के रहूंगा, आज ही मुरली में बाबा ने कहा है वो हम करके छोड़ेंगे और हमें अवश्य प्राप्त हो सकता है। ये पांच बातें अगर हम रोज दिनचर्या में अपने आप में चेक करें और बना करते रहें तो हम समझते हैं क्या अवश्य हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे और स्वयं के बदलने से जग को बदला सकेंगे, और विश्व परिवर्तन का आधार स्वयं परिवर्तन है, स्वयं परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। मैं यही आशा करती हूँ आप सब अवश्य विश्व परिवर्तक बाबा के विश्व परिवर्तक बच्चे बैठे हैं और जरूर सारे विश्व को परिवर्तक करके परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे। ओम शांति।